जगत में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां खंडन कुछ नहीं करना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अंदर प्राप्त कर लो तो वही बाहर है, और बाहर कहीं जा करके अगर साधना के द्वारा परम तत्व तक पहुंचते हैं, अंदर से बाहर वही है, बाहर से अंदर वही है। कहीं कोई पद्धति गलत नहीं है, कोई भी पद्धति गलत नहीं है। पहले इस शरीर को साधने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने उपाय बताया, सभी के लिए ठीक है। हमारे और आपके अंदर दो विचार हैं और एक कुदरती है, शुभ और अशुभ। ये विचार के मालिक नर और नारी ही है। पशु अपने जीवन से अपने ढंग से जी लेगा, लेकिन हमें आपको जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता में शुभ और अशुभ है। पहले वेद को लीजिए, फिर व्यवहार को लेता हूं। जब हम आप इस धरती पर आए तो अपनी बाल्य अवस्था देखें, आप पुत्र थे कि आप पुत्री थे? आपके मन में राग नहीं था, द्वेष नहीं था, कोई भेद नहीं था, अपना और परायापन नहीं था। तो वेद कहता है कि जिस रास्ते से हम फिर से बालक की स्थिति प्राप्त कर लें, वह साधन आपके लिए सिद्धि प्रदान करेगा। वेदों ने नहीं कहा कि ये पूजा करो कि ये पूजा करो, ये कहा फिर से बालक बनने में जो श्रवण, दर्शन, चलन, हलन, बातचीत आप बाल के रूप में अपने को फिर लाकर स्थापित कर देते हैं। भगवान बाल स्वरूप जब उनका देखिए तो आप पाएंगे आज के भी बालक कभी आपस में लड़ भी पड़ते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन उनके मन में कोई राग और द्वेष नहीं है, फिर मिल जाते हैं। माँ से रूठते भी हैं, फिर माँ की गोद में आकर बैठ भी जाते हैं। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो घर से रूठकर बाहर निकल जाता है, परेशानियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हमारे आपके अंदर जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जैसे गेहूं के साथ घास अपने आप आती है, हमें खेत में घास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे खेत में हमने गेहूं लगाया, घास आएगी, लेकिन घास को निकालें कैसे? उसकी व्यवस्था है। घास निकालते समय हम विवेक रखते हैं कि मेरी उंगली न कटे और मेरा गेहूं भी न कटे। गीता में जब कहा गया योगा कर्मसु कौशलम, तो यही अपने कर्म को इतनी सावधानी से करो कि बेकार की चीज निकल जाए और आपका अपना भी हाथ सुरक्षित रहे। घास निकालते समय गेहूं भी नहीं निकले और आप उंगली भी नहीं कटे, इतना विवेक हमें रखना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, विशेष तौर से कबीर ने कहा, आप जब भी कोई काम करते हैं व्यवहारिक, आप बाजार से गेहूं लाए, बाजार से चना लाए या चावल लाए, तो हम देखते हैं उसमें जो बेकार चीजें निकाल देते हैं और फिर वो चावल शुद्ध हो जाता है, पकाते हैं और खाते हैं। चावल के साथ कंकड़ क्यों आया आता है, गेहूं के साथ घास क्यों आती है आता है, ये क्यों का सवाल नहीं, इसे स्वीकार करो। हमारे आपके मन में भी दो विचार आते, शुभ और अशुभ, दूसरे का भला सोचना, दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, मन में सेवा का भाव आना, ये सब शुभ विचार हैं। दूसरे का छीनना बिना जरूरत, दूसरे को सताना, रावण का मतलब क्या है, राक्षस, बिना जरूरत दूसरे को तकलीफ देना, और राम दूसरे को सुख देने के लिए स्वयं तकलीफ उठाते हैं। जब आप स्वयं तकलीफ उठाते हैं और सुख देते हैं तो आप शुभ हैं। अपने सुख के लिए जब हम दूसरों को तकलीफ देते हैं हम अशुभ हैं। इसी शुभ को स्वरूप में राम के आकार से हमने जाना, अशुभ को रावण के आकार से जाना। शुभ और अशुभ है वैज्ञानिक ढंग से देखिए, आप भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर से यहाँ बैठे हैं, जानते हैं कि हमारे शरीर में भी भोजन के बाद खून को शुभ माना गया, मलमूत्र को अशुभ माना गया। हमें जब तकलीफ होती है अशुभ को नहीं निकाल पाते, मलमूत्र को नहीं निकाल पाते, तो हम डॉक्टर से दवा लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर हमारे भोजन में से जो मलमूत्र बना है उसे निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रवण और मनन गुरु के माध्यम से जो प्राप्त होता है, हमारे आपके विचारों में जो गंदगी है, जो मैल है, जो सड़ी हुई चीज है, हम लोग नहीं निकाल पाते। लेकिन जब अच्छा गुरु मिल जाए तो वो निकल जाता है साधना के लिए। तो जा देखिएगा, ये सब था है और रहेगा। समाज में भी, जगत में भी और हमारे आपके अंदर भी ये शुभ अशुभ परिबल दोनों रहेंगे। लेकिन व्यक्ति कुछ भी हो लेकिन अशुभ को नहीं जाना, अब इसकी साधना के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सबसे पहले एक अभ्यास करो कि सुबह जल्दी उठो, सब धर्म है। कहीं शब्द की बात आती है, कहीं अजान की बात आती है, कहीं पाठ की बात आती है, लेकिन सूरज निकलने से 90 मिनट पहले उठना बहुत जरूरी है। जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि सूरज निकलने से 90 मिनट पहले हवा में उत्तरी ओजोन का दबाव होता है। हमारे जितने गलत विचार हैं, गलत सपने हैं, ये 90 मिनट के अंदर ही आते हैं। ओजोन का प्रभाव पड़ने से विचार बहुत ही दूषित हो जाता है। सूरज निकलने पर वही वो थ्री ऑक्सीडाइज होकर के वो टू ऑक्सीजन बन जाता है। जा विचार कीजिए तो सबसे पहले सूरज निकलने से 90 मिनट पहले उठिए तो बेकार के सपने जो आते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने देखा है 80% बेकार के सपने 90 मिनट के अंदर ही आते हैं। अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो आपको भी आएगा, जितने खराब सपने हैं बेकार के वो सब इसी बीच में आते हैं। ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? आज विज्ञान का शायद 90 मिनट पहले उठना जरूरी है। हवा में ओथरी ओजोन का दबाव है, लेकिन हमने ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म कि जागने पर ब्रह्म नाम शक्ति है, ये ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा कि जागने पर आपका मन बेकार की बातों में नहीं लगेगा, शक्ति सुरक्षित रहेगी। लेकिन ऋषियों ने सोचा केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए मन को अच्छी बात में लगाने के लिए कहीं शब्द की बात आई, अजान की बात आई, कीर्तन की बात आई, ध्यान की बात आई, पाठ की बात आई, हमारे आपके विचारों को अशुभ से शुभ में जाने के लिए एक अच्छे शब्द का आधार बहुत जरूरी है। चाहे वो राम है कि कृष्ण है कि अल्लाह है कि जीसस क्राइस्ट है कि बुद्ध है कि महावीर है, जिनका नाम लेते ही क्षेत्र और चरित्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए सभी धर्म में जल्दी उठने की बात है, बेकार की बातों से बचें। लेकिन जगने के बाद हम अपने पड़ोसी के लिए किसी के लिए कुछ कारण या आधार लेकर के गलत ना सोचें, क्योंकि विज्ञान ये कहता है तो जो गलत स्वप्न है वो आपके एनर्जी का सत्यानाश करता है। इसलिए दिन में अच्छे काम में मन नहीं लगेगा, बेकार की बातों में लगेगा, किसी की निंदा करना, झगड़ा करना, सच की बात फलाने बातें सब, ये विज्ञान कहता है। विज्ञान तो यहाँ पर कहता है सभी लोग बातें तो करते हैं लेकिन अपनी बातों को कागज पर लिख करके पढ़े तो शर्म लगेगी कि मन क्या क्या सोचता है, कितनी गलत बात सोचता है। दिन में गलत चिंतन नहीं हो, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ऋषियों ने उठाया। अब ब्रह्म मुहूर्त का नाम एक शक्ति, मन की शक्ति मनोयोग। और विज्ञान कहता है कि हमारे जो विचार हैं शुभ और अशुभ, तो जो अशुभ है उसे कहा परस्पेचुअल थॉट, तो जो अशुभ विचार है उसको कहा एनिमल पैशन, लड़ाई झगड़ा खाना पीना सेक्स सब क्या है पशुधन, ये एनिमल पैशन, ये है परस्पेचुअल। डिवाइन जो है कंसेप्चुअल, पाठ करना, पूजा करना, दूसरे के लिए परोपकार की बात सोचना, बदले की भावना नहीं आना, प्रसन्नता, ये सब है कंसेप्चुअल। हमने कहा अशुभ से शुभ में जाने के लिए जल्दी उठो और किसी अच्छे शब्द का जिसका चरित अच्छा है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसका स्मरण करो। और फिर विज्ञान आ गया, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप राम का स्मरण करोगे, कृष्ण का करोगे, शंकर का करोगे, या जीसस क्राइस्ट का करोगे, बुद्ध का करोगे, महावीर करोगे, पीर पैगंबर का करोगे, तो वो अस्तित्व आपके अंदर बनेगा। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका इतना तादात्म्य स्थापित हो जाएगा कि कर्म करते हुए भी शुभ अशुभ दोनों से आप अलग रहें, आप आनंद रहें, अनुकूलता प्रतिकूलता आप दोनों को स्वीकार करेंगे। तो सौरभ का जो प्रश्न है वो सबके लिए है। अब परेशानियां कहाँ कहाँ पैदा होती है, उन्हीं परेशानियों को समझ लें तो साधक को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या सावधानी है सबके लिए, चाहे आप पढ़ते हैं या प्रोफेशन में हैं या ध्यान करते हैं या प्रवचन करते हैं, कहाँ कहाँ पिटफॉल्स है, कहाँ कहाँ हमारा पतन होता है, वो रामायण और महाभारत से हमारे ऋषि मुनियों ने दिखाया। पहला पतन है ठीक से न देखना, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा हर पुरुष नारी में शक्ति का दर्शन करे, उम्र के हिसाब से माँ और बेटी माने, दर्शन तो सभी करते हैं, नदी का दर्शन तो सभी करते हैं, एक भक्त भी करता है और एक मछली मारने वाला भी करता है। नदी में तो आप भी नहाते हैं, मैं भी नहाता हूँ, और पंछी भी नहाते हैं और पशु भी नहाता है। इसी तरह से हम जाग गए, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो जिस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, हमारे तुलसीदास ने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। सीता राम केवल प्रतीक है, आंख देखती है लेकिन अशुभ ना देखे, किसी गलत समान सब परमात्मा के स्वरूप है। अगर आपसे कहूं कि मन को हटाओ, आप जितनी कोशिश करेंगे मन उधर जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ध्यान में वानर ना है, तो दूसरे दिन आकर आप कहेंगे कि स्वामी जी ध्यान में वानर ही आ रहा है। आपका विज्ञान भी कहता है the more you accept or deny, you accept the existence। आप स्वीकार करो या इनकार करो, जितना स्वीकार या इनकार करोगे दोनों में उसका अस्तित्व आपके अंदर बनेगा। इसलिए मैंने कहा वानर मत देखो तो भी अस्तित्व बनेगा। अब हमारे ऋषियों ने कहा बानर देखो लेकिन उसमें परमात्मा देखो, बानर का ख्याल आते ही परमात्मा। बाइबल में भी आया है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं जो शुभ है वहां अपना धन दौलत रख दो। सेंट पॉल जब पूछता है तो वहां कहा है, सेंट पॉल कहता फिर शुभ क्या है, तुम्हारी निगाह में आदरणीय कौन है, who is the most respected on the earth in our eyes, servant from the Mount Pariyat. तुम्हारी निगाह पे सबसे आदरणीय कौन है? वो कहता दाऊद, आप। तो अपनी धन दौलत को स्वयं मुझे समर्पित कर दो, जिसको टोटल सरेंडर बोलते हैं। इसलिए जब भी धन याद आए तो जीसस क्राइस्ट याद आ गया, मैं याद आ गया। बाल बच्चों को मुझे दे दे, जब भी बाल बच्चे याद आएंगे ये जीसस क्राइस्ट के हैं। और अगर इस तरह तो मुझे याद करेगा तो याद करते करते ये जो मन की बेकार की बातें हैं सब ठीक हो जाएंगी। तो टोटल सरेंडर में क्या है? बड़ी जबरदस्त एक मनोवैज्ञानिक बात। हम कहते हैं हम सब कुछ भगवान को दे दिया, तो ये धन भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, ये विचार भगवान का है। जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पित अपने आप को किया किसके प्रति, तो दुशासन थक गया, लेकिन दुर्योधन का जो बल था वो घट गया, कम हो गया, थक गया, लेकिन द्रौपदी का मान सम्मान बना। क्यों? पूर्ण समर्पण। आप नदी में जाते हैं, समर्पित हो जाइए तो पार हो जाइए, और समर्पण नहीं करोगे तो डूब जाओगे। तो समर्पण का मतलब यही है, भगवान आपसे ना आपकी कोठी लेंगे, ना बच्चे लेंगे, ना धन लेंगे, लेकिन समर्पण में जो अहंकार है वो गल जाएगा। ये सब परमात्मा का है। जब परमात्मा की चीज है तो उसका दुरुपयोग न करो। यहां परमात्मा का है तो प्रणाम करोगे, ये जीवा परमात्मा की है तो अच्छी बोलोगे, ये कान परमात्मा का है तो अच्छी बात सुनोगे। तो सबसे पहले जल्दी उठो, कोई अच्छे मंत्र का जाप करो, मन कहीं जा जाने दो, वो वही है। राम तो सभी राम है, कृष्ण तो सभी कृष्ण है, अल्लाह तो सभी अल्लाह है, बुद्ध तो सभी बुद्ध है। और फिर भी अगर परेशानी होती है तो देखने की परेशानी में वहां परमात्मा देखो। अगर थकावट आती है तो भोजन ज्यादा होगा, भोजन दिन में 3 बार आप करें, लेकिन 1 बार में थोड़ा करें, चाहे आप पढ़ते हैं या आध्यात्मिक साधना में। अधिक भोजन करने वाला जीवन में कुछ भी विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे योगेश्वर ने अर्जुन को बताते समय कह दिया आहार की जो बात की, युक्ताहार विहारस्य। आज मनोवैज्ञानिक विस्तार से कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ। आप 4 रोटी खाते खाइए, लेकिन 5 रोटी खाने से तकलीफ होती, काम नहीं होता, तो युक्ताहार विहारस्य, आपका आहार और विहार में युक्ति होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम भोजन कर रहे हैं कि कर्म करें, और अधिक भोजन हमारे विचारों को ऊपर नहीं उठने देता। हम जब इस धरती पर आए तो नाभि में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए गए, अर्थात ब्रह्मा रचना, विष्णु प्रेम, संकट संघात। लेकिन जब अधिक भोजन से नाभि पर दबाव पड़ेगा तो आलस आएगा, हम न कोई रचना कर सकते हैं, या जो कुछ है उसके प्रति भाव नहीं आएगा, और रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए योग की साधना में इस शरीर को मुख्य मान करके आप अच्छा भोजन करें, लेकिन भोजन करके आलस आए, इसलिए थोड़ा सा कड़वा खाए, जैसे करेला है ये। मनोविज्ञान आया, महीने दो महीने में 15 दिन में मिष्ठान का सेवन कीजिए। लेकिन भोजन में बहुत अगर स्वाद आएगा तो अधिक हो जाएगा, इसलिए नमक और शुगर एक कम से कम सेवन करें तो अच्छा है। मनोविज्ञान कहता है कि 40 साल के बाद अगर नमक और खान कम कर दें तो आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक बहुत स्वस्थ रहेगा। कड़वा का मतलब यह नहीं कि नमक ज्यादा डाल दिया। कुछ प्रदेश में मैं गया हूं जहां निमड़े की भी चटनी बनती है, करेले का ज्यादा उपयोग होता है। तो आप भोजन पर बहुत ही ध्यान रखें, भले बादाम का हलवा बनता है, ये आपकी समृद्धि का लक्षण है, लेकिन 5 ग्राम खाना है तो 6 ग्राम नहीं खाना है। 5 का 4.5 ग्राम करना ठीक है। आप 3 रोटी खाते हैं तो 4 मत खाइए, 2.5 करना ठीक है। इसलिए भोजन पर देखने के बाद कितने लोगों से मैंने कहा कि साधना में आना है तो भोजन कम करो, और मुझसे कहते महाराज जी मन में आता है कि कल से कम करूंगा, कल से कम करूंगा, लेकिन आज तक कभी कम ही नहीं हुआ। कल ही कल। जो आप कल कर सकते आज क्यों नहीं करते। फिर आया, बड़े प्यार से कहूं, आपका जो आसन है वो आसन कभी ऐसा लगे कि धोना है तो अपने हाथ से ही धोना, किसी और को नहीं देना। राजयोग में साफ साफ आया, और आज उसका हमारे डॉक्टर बता रहे हैं आजकल 16-17-18 साल के बच्चों में रोग आ रहा है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे जाते हैं सस्ते होटल में रहते हैं, उस होटल के कमरे में पहले कोई बेकार का आदमी रहा, बेकार की बीमारियां थी, और बच्चे सोए और इन्फेक्शन के नाम से बीमारियां लग रही। तो जैसे आज इन्फेक्शन से बीमारियां लगती हैं, इसलिए अगर गलत आदमी आपके आसन को छुएगा बैठेगा तो उसमें भी गलत विचारों का असर हो जाएगा। इसलिए कभी भी, पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे कि भारत के साधु संत फकीर अपने बर्तन में खाते लकड़ी, ये बड़ी शुद्ध है, एंटीसेप्टिक है, ये राख से जो है हम बर्तन धोते हैं, राख को भी बताया गया, इससे शुद्ध। और आपके पास कोई चीजें भले पाउडर से करो लेकिन कितने बैक्टीरिया नहीं मरते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कभी आप बाहर जाएं, होटल में रहना पड़े तो भी आपके सिरहाने का कपड़ा और बिछाने की चादर, ये दो तो साथ लेके जाना, वहां मिलता है ये करके मत जाना। पता नहीं कौन सोया था, कैसे किया था, पता नहीं कैसा रोग लग गया। और अपने आसन पर राजयोग करता है कि मेरे मन में भी कभी विकार आ जाए, राग द्वेष आ जाए, तो जिस आसन पर बैठ कर के रोज भजन करते हो उस दिन उस आसन पर भजन न करना, घूमते हुए माला लेके हे राम हे कृष्णा करना, क्योंकि आपका गलत विचार भी प्रदूषित कर देगा आसन को, इसलिए 3 घंटे तक बेकार के विचार आपको भी आते रहे। आपका जो भोजन बनाए, हमारे यहाँ कहा गया ना, जो भी भोजन बनाए अन्नपूर्णा, इसलिए मैं नहीं कहता कि आपका भोजन कौन बनाए, लेकिन जो भोजन बनाए उसका आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं आदर करोगे तो उसके मन में जो परेशानी आएगी, और आपको बता दो, ऋषियों ने कहा है यहाँ है, अगर आपके पति को क्रोध आता है तो भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र जाप करो और मन को शांत रखो, और माँ से कहो, माँ कुछ मन में बोलो कि मेरे पति को शांत रखो, तो आज विज्ञान मानता है और आपके सामने विज्ञान का आधार पे कहता, आपके पति को कितना क्रोध आता रहे, लेकिन भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र का जाप करके सुबह शाम 6 महीने पति खिलाइए, इसके बाद अगर पति क्रोध आता है तो मेरे पास आ जाए। और अगर पति को क्रोध दिलाना है तो बस बोलती रहिए और भोजन बनाती रहिए, नहीं भी क्रोध आता होगा तो आ जाए। विचारों का कितना असर, रसिया में प्रयोग करके देखा गया। हमारी आपकी बात छोड़ो, ये पेड़ है, पेड़ नीचे बैठ के भजन करें, अच्छे शब्द बोलें, सत्संग करें, तो पेड़ भी हरा भरा और फल ज्यादा देता है। इसमें कैपिलरीज होती है, विज्ञान कहता है, वो रिसीव करती है। और पेड़ नीचे बैठ करके गप्पा मारें, हल्की बातें करें, तो हरा भरा भी नहीं रहेगा और फल भी ज्यादा नहीं रहेगा। ये आपकी गाय है, गाय को प्यार से, मेरी माँ गाय, गो माँ, उस दिन 50 ग्राम दूध ज्यादा देगी, लेकिन दूध निकालने के पहले जरा थोड़ा तेज बोल के थप्पड़ मार दीजिए, देख लीजिए उस दिन 200 ग्राम कम हो जाए। विचारों का जरा बड़े प्यार से करता हूँ। जो लोग यहाँ रहते हैं जानते हैं कि आश्रम में 5 नाग है। हम लोग शिव के पुजारी हैं ना मूल, इसलिए नाग तो रहेगा हमारी रक्षा। आप लोग जब चले जाते हो हमारी रक्षा कौन, तो जानते हैं लोग। जब मैं यहाँ नहीं रहता तो मजा लगे कोई आ जाए, लेकिन कोई कहे कि कितने लोगों ने अनुभव किया कि उनके सामने मैंने कहा रखा है यहाँ जो नाग हैं वो कुछ नहीं कह। आप मन में गलत विचार ना खड़े रहो, आपके पास से गुजर जाएगी। अच्छा आप बताइए, जंगल में आज तक किसी भरवाड़ को, भगत को, संत को कभी नाग काटा, कभी नहीं काटा, लेकिन जो शिकार करने जाते हैं ना उनको, और जो लोग गलत विचार के हैं, कोठियां तो 1-1 करोड़ की हैं, और मुझे कहते हैं महाराज जी इतनी बड़ी कोठी है फिर भी सांप के धस आया। मैंने कहा गलत विचार पहले आपके मन में आया इसलिए हुआ है, तुम पड़ोसी का देख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। कहे हाँ स्वामी, तो जंगल में हम लोग खुले आम रहे लेकिन नाग कभी नहीं काटा, और कोठियों में सांप आके काट रहा है। विचारो ही तो नहीं तो पशु पक्षी जाना। यहाँ आप अनाज रखिए, कबूतर आएगा, अगर आपके में प्रेम है देख लीजिए आपके पास से लेकर के चला जाए, और आप पकड़ना चाहते हैं तो वो फड़फड़ा के उड़ जाए। इसलिए कि भोजन जो भी बनाए, मेरी माँ बनाए, बेटी बनाए, उसका आदर करो, और नहीं तो 50% लोग क्या करते, माँ को तो नहीं बोल सकते लेकिन पत्नी को लोग बोलते हैं। मैं कहा था कि रेगने का रवैया बनाना, बाप के घर चली गई थी, अभी क्यों नहीं बनाए, अब क्या वो भोजन तो जहर बन गया, अब वो खाने के बाद क्रोध ही आएगा, मैं और क्या। और याद रखिए, अगर मैं ऋषि मुनियों की बात बताऊं तो बड़े हाथ जोड़ के कहता और बड़े प्यार से कहता, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन शक्ति प्राप्त करके जिसे अहंकार और क्रोध नहीं आता, उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके अंदर है प्रभु, लेकिन आपने क्रोध अहंकार में उसको दबा के रख दिया। पानी तो है, ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन पानी क्या है? कंकड़ पत्थर के नीचे है। वो कंकड़ पत्थर जब निकालते हैं तो पानी आता है, तो हमारे अंदर भी अहंकार और क्रोध एक कंकड़ पत्थर है, इसको निकालिए। जैसे निकलते कुएं में पानी अपने आप आ जाता है, ऐसे अहंकार क्रोध के निकलते ही परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। निकालने को जरूरत पानी कहाँ से आए? पानी तो दबा हुआ। इसलिए चाहे राम की बात करें, कृष्ण की करें, जीसस क्राइस्ट की करें, फिर पैगंबर करें, एक से एक परिस्थिति आई, लेकिन कभी अहंकार और क्रोध। एक मैं अपना उदाहरण बता दूंगा आपको, बहुत पुराना, हरिद्वार की बात है, 72 का कुंभ है, जब छविलदास वगैरह सब आए थे सब, तो एक शंकराचार्य जी का प्रोग्राम था, 10-12 से आज साधु आए थे, मुझे विशेष रूप से बोलना था, तो मैंने कहा प्रातः स्मरणी परम पूज्य जगत गुरु करके बोला, अच्छा बोला। फिर मैं मिलने के लिए गया, शंकराचार्य जी हैं इसलिए सुबह जाके मिलना पड़ता है हमें, शंकराचार्य जी हो हमें मिलना बड़े पहले करना पड़ गए मिलने, उन नियम से महामंडलेश्वर को जाना पड़ता। तो कहे मनीषानंद जी आप प्रवचन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे प्रातः स्मरणी न बोलिए, शंकराचार्य जी बोल। पर कहा क्यों? कहा जो प्रातः स्मरणी है ना, उसमें अहंकार क्रोध नहीं आता, और अभी मेरे में थोड़ा अहम क्रोध है, इसलिए प्रातः स्मरणी करके मेरी कमजोरी को नया दिलाओ। जब ये निकल जाएगा तो मैं कहूँगा कि प्रातः स्मरणी बोलो, और आप भी ख्याल रखना आपके चेले बहुत प्रातः स्मरणी बोलते हैं, तो ख्याल रखना अहंकार और क्रोध
नहीं है,
नहीं तो काहे के प्रातः क्रोध। अगर देखो मैं आपका गुरु बड़े प्यारा, मेरे में अहंकार क्रोध है, तब मुझे याद करोगे, तो जब मुझे याद करोगे तो आपको भी अहंकार क्रोध ही आएगा ना, जो है वो और क्या है क्या है जिसे याद करोगे। तो एक बात बताता, इसलिए आप ये मात देव भव, पित देव भव, आचार देव भव, ये देव क्यों बोलेंगे, भगवान क्यों बोलेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन माँ को क्रोध, पिता को क्रोध, अतिथि को क्रोध, और गुरु को क्रोध, और क्रोध आ गया, न वो माँ है, न वो बाप है, न वो अतिथि है, और न वो गुरु, ये आपको बता दूँ। और जब हम आधे हो गए तो खतरनाक तो बनेंगे, खतरनाक तो देख लीजिए। तो इसलिए जो भोजन बनाता है, अगर आपकी पत्नी बनाती है तो उसे कहा उस समय उसे भी अन्नपूर्णा मानो। हमारे संतों में क्या बताऊं, जरा आप सोचो तो सही, कि वो साधना की दृष्टि से आपके घर पर आया, आपने भोजन किया, मान लो नमक तेज, तो हमारी बेटी मतलब आपकी पत्नी क्या जानबूझ के नमक तेज किया, तो हमारे आचार कहते हैं तुम भाव को देख रहे हो कि नमक को देख रहे हो, भाव को देख रहे हो कि, अगर भाव देखोगे तो एक दिन थोड़ा नमक ज्यादा खाने से कोई मरने वाला बात में समझा, लेकिन आप तो थाली उठा के फेंकते हैं और लगते हैं उसकी माँ को बोलने, तो आपके माँ ने क्या सिखाया जो उसकी माँ की बात करते, तेरी माँ ने क्या सिखाया, क्या 16 साल में तो लेके आ गए, दिन में 4 बार तो दही बड़े खाते थे, और वो भी बाजार का, क्योंकि लड़की क्या करती है, अरे माँ ससुराल जाऊँ काम करना पड़ेगा। आ तो एक व्यवहारिक रूप दे रहा, जा विचार कीजिए, सोचिए तो सही। तो आप एक दिन एक थोड़ा नमक खाने से इतना आ गया, तो आप क्या कंट्रोल कर पाओगे, कोई लड़ रहे, बचाने वाली बात अलग है, लेकिन वो देख करके क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आया, कि मेरे सामने क्यों लड़ते हो, इसका मतलब मेरापन अहम है, कि मेरे सामने, इसका मतलब मेरे पीछे लड़ो लेकिन सामने अरे लड़ाई पीछे हो कि आगे होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। कई बार मैं अपनी बात बताऊं, ट्रेन में ऐसे वैसे हो जाता है। अच्छा, हमारे चेले आते हैं, अच्छे घर के हैं तो सिगरेट तो पियेंगे, मुझे देख के यूँ कर लेते हैं। अरे मैंने कहा भाई मैं ही मुँह फेर लेता हूँ, सिगरेट तो पीते बड़े खुश काहे के विदेशी सिगरेट बिगाड़ता, राख ही कर रहा है, राख बना दी काहे को फेंकता है। फिर धीरे धीरे सब कर लेता। एक बार कोई मेरे पास आया, कहे स्वामी जी आपका चेला ऐसा है। मैंने कहा उसका गुरु ही कमजोर। वो जा करके बोला, कहे अरे मेरे कान गुरु जी का है, इसलिए थोड़ा समय आपसे कहूँगा कि छोटी छोटी बातों में ये जो आपका 5 मिनट का क्रोध है, ये 3 घंटे की आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अर्थात 3 घंटे तक कोई अच्छा काम आप करने वाले नहीं, और उसमें कोई आ गया तो जवाब उठ पटांगे। इसलिए हमारे दो ही दुश्मन जबरदस्त है, अहंकार और क्रोध। और इसलिए माता पिता गुरु अतिथि प्रातः स्मरणीय है, तो मैं अपने को मिला के कहता हूँ कि अगर प्रातः स्मरणीय पूज्य हैं तो अपने अंदर अहंकार क्रोध न माँ को आना चाहिए, न पिता को, न अतिथि को, न गुरु को। और फिर जो कुछ है उसको संभाल लेना है, प्यार सब कुछ। क्रोध आप क्यों करते हैं? प्यार में जा समय लगता है। और फिर मनोविज्ञान कहता है माता पिता गुरु सबके लिए, तुम क्रोध करके दबा सकते हो लेकिन सुधार नहीं सकते, लेकिन जब वही बड़ा होगा तब कहेगा गुरु जी अब बताओ, माता जी अब बताओ, पिता जी अब बताओ। इसलिए जो दबी हुई चीज है वो 15 साल के बाद इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हमें रोना ही पड़ेगा, बाकी और कोई हमारे हाथ में नहीं है। या विचार कीजिए, एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। पिता का ये, मैंने पिता से कहा था 10-12 साल पहले, भाई बच्चा आप उसकी बुराई न करो, ये न करो। फिर पिता जरा मेरी बात सुने नहीं, उन्होंने मेहमानों से कह दिया ये तो नालायक है। कहा क्यों? कहा सुना है शराब पीता है। बड़ी प्रैक्टिकल बात बताओ, किसी ने जाके नमक में मिला के लड़के से कह दिया तेरा बाप ऐसा बोलता था, तो कहा कोई नहीं अभी छिप के पीता, कल सुन के सामने ही पीता हूँ, देखता हूँ क्या करूँ क्या करूँ। इसलिए कुछ भी हो गले लगाओ, प्यार करो, समझाओ। और कहते हैं प्यार में व्यक्ति सुधरेगा लेकिन समय लंबा, क्रोध में केवल थोड़े दिन दबाओगे लेकिन जब उसका समय आएगा तो आपके सामने ही करेगा। तो इसलिए आपका जो भी भोजन बनाए उसके प्रति भाव, कभी नमक कम ज्यादा हो गया तो नमक कम ज्यादा होने से कोई नहीं, लेकिन क्रोध जो है ये अग्नि है, सत्यानाश करता है। एक चीज का और ख्याल रखना है, आज विज्ञान मानता है अगर आपको मालूम है कि कोई सिगरेट पीता है या कुछ नहीं सोचता, तो विज्ञान एक्टिवर पैतु करके लाया कि सामने 6 फुट पहले बैठा दो, लेकिन विज्ञान कहता है बगल में न बैठना है न किसी को बैठाना। ये जो श्वास चलती है उसका असर पड़ता है, तो डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बगल में भगवान को रखो, माता को रखो, पिता को रखो, गुरु को रखो, लेकिन आप लोग तो गुरुओं को ऊपर रख देते हो और पीने वालों को बगल में बैठा लेते हो, और हमारी फोटो उल्टी कर देते हो, गुरु जी को ऊपर रखा देगा इसलिए कहते। तो ये बड़ी जबरदस्त एक मनोवैज्ञानिक बात है, हम सबको नहीं सुधार सकते लेकिन रास्ता बता। कोई आपका मित्र रिश्तेदार शराब पीता है तो आप क्या कर सकते? हमने लड़की दी है तो लड़की सुख लिए, अब ससुरा को क्या बोले? कितने लोग आते महाराज ससुरा बहुत अच्छा पीता है, तो मैंने कहा ऐसा है कि उसके लिए एक अलग कमरा बना दे के पीते रहो, लेकिन पी करके नीचे न बैठे, मैं देता हूँ। इसलिए आप को बड़े प्यार से करता। एक बड़ी सुंदर बात बताएं जिसे सुन के आप ताजुब करेंगे कि मनोविज्ञान क्या करता है। ये जब हमारे अंदर सुंदर विचार आता है ना, सुंदर विचार, तो उसमें सुगंध निकलती है। और यहाँ जो लोग विज्ञान पढ़े हैं उस सुगंध का नाम है इथिलियन ऑक्साइड। पहले हम तो सुगंध कहे इथिलियन ऑक्साइड। इथिलियन ऑक्साइड जो है इससे जो सुगंध पैदा होती है उसी सुगंध से ये पशु समझ जाते हैं कि खतरनाक नहीं है। और जब हमारे मन में गलत बात आती है इनर गैसेस पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गंध है उससे उनको पता लग जाता है कि आदमी ठीक नहीं है। इसलिए इसको के ओरा करके माना गया है, माना है। आप तो बड़े प्यार किसी के पास बैठिए और आनंद आ जाए तो समझो हमारे लिए अच्छा विचार कर रहा है, और किसी के पास बैठ के लगे गए हैं तो मेहरबानी करके उसको जलेबी दूध खिला के जल्दी विदा कर दो, या तो विदा हो गया जल्दी विदा कर, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि जब मेरे घर आते हैं तो पानी भी नहीं पूछता, ये मुझे काफी पिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं, शायद ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना सुखी। उसके मन में बड़ी बेकार की, आज मेरी लड़की की शादी है कोई नाराज है क्यों बोला, पूरा विज्ञान है। 2000 मेहमान आए एक को नहीं बुलाया तो बुरा मानिए, सभी इतने ऊंचे हैं। उसके मन में आए बिजली नहीं आए, ये हो जाए, वो हमारे लिए जो गलत सोच रहा है इसलिए मना के लाते हैं कि हमारे लिए कोई गलत। इसलिए आपसे कहता हूँ कि व्यवहार ऐसा करो कि भले मेरी प्रशंसा कोई न करे लेकिन हमारे आपके लिए कोई गलत न सोचे, और हाथ सिर पर रख के न बोले ये सुबह सुबह कहाँ राक्षस मिल गया। ये जो सोच रहे हैं, इसलिए सौरभ बेटे ये प्राइमरी चीज की तैयारी है, हमें एकांत में रहना है, हमारा जैसा ही पड़ोसी होना चाहिए, नहीं तो सामने रखो, व्यवहार में थोड़ी देर मिलो, और जहाँ तक बन सके जो अच्छे लोग हैं उनसे हाथ मिलाओ, नहीं तो प्रणाम कर, उसका इन्फेक्शन लगता है, उसके विचारों का। जो भी भोजन बनाए उसके प्रति आदर सत्कार करो, कभी भोजन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उसको इतने शक्ति रखो कि मन में कोई गलत बात नहीं आए। और एक जबरदस्त बात है कि अपना आसन अपनी माला ये कभी दूसरे के हाथ में देने, माला और आसन कभी दूसरे के हाथ में हमें देने की जरूरत नहीं है। इतना कीजिए, अभी सौरभ रहेंगे, ये प्राइमरी चीज है, फिर आगे बताओ टाइम कितना हो, तो मुझे जाके सो जी के यहाँ जाना है, मैं एक आधे घंटे में आ रहा हूँ, आप आ रहे हैं किशोर जी, आप तो आ रहे हैं ना, Thank you.